जी सामने नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड सब लीजिए, ऑलमोस्ट 25 सेकंड बिफोर 7 o'clock, क्या बात है जी, ऐसा टाइम किसी ने नहीं बताया होगा आपको, खुद ही फिगर आउट कर लें। और अब मैं आपको लिए चलता हूं साहब, आप बड़ा वेट करते हैं फयाज विलाना साहब का, तो मैंने कहा चलिए फयाज विलाना को लेके आते हैं आप आपकी कचहरी में, है ना। और आप क्वेश्चंस तैयार रखें, 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है, 416-620-1778। फयाज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, सर कैसे हो आप?
वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज है माजद जमाल साहब?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जबरदस्ती बिठाया गया है मेरे साथ एक शख्सियत को, तो उनका भी इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको मैं।
क्या ये आप कह रहे हैं, वैसे लोग अदरवाइज सोचते हैं।
क्या हाल है फयाज भाई, ठीक हो?
बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा जी, अच्छा अच्छा, अच्छा पायन, जरा ये जो तीन बहुत भड़के हुए मामले हैं, तो इनके ऊपर जरा थोड़ा सा आपकी मर्जी है, आपने ट्यूबलाइट से रोशनी डालनी है, उससे डाले, टॉर्च से डालनी है, बड़ा रोशनी जरूर डाले। तो ये बताएं तीन मामलात जो हैं, एक तो मुनसलाई, जैसे आपने कहा था दो हफ्ते पहले जी उसको आप करेंगे, उसके ऊपर वो स्यापे खोलेंगे, फाइलें खोल दी हैं उसकी FIR ने।
वन बाय वन
नहीं, मैं क्वेश्चन तीनों कर देनी है, तुम वन बाय वन जवाब दो।
ना, लोग भी भूल जाते हैं ना लोग।
अच्छा अच्छा, चलो
लोगों में सस्पेंस भी रहना चाहिए ना, कि पता नहीं दूसरा सवाल और तीसरा कौन सा है, लोगों में सस्पेंस रखे ना।
चलो जी ठीक है, सस्पेंस ऐसी रखने हैं। चलो दसो फिर मुनो सिलाई दा बेचारे मस्कीन दा।
मुनो सिलाई का मैंने आपको बता दिया था कि ये उसको तंग करने के लिए करेंगे। असल में बात ये है, मेरे ख्याल में जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि इमरान खान लक्की है, ये भी लक्की है कि इमरान खान ने आखिरी टाइम पे उनसे बाप बेटे से ये पता नहीं गलत फैसला हुआ या सही हुआ, लेकिन उन्होंने आखिरी टाइम पे, हालांकि उनकी डील बन रही थी जरदारी के थ्रू मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब में, आखिरी टाइम पे उन्होंने, उन्हें ये शक था क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते मियां बिरादरान पे, वो कहते हैं इन्होंने हमें बहुत पहले भी पंजाब की वजारत आला के हवाले से हमें खराब किया था, ये कभी भी हमें वजारत आला नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने तमाम वादे वईद कर लिए थे इनके साथ, लेकिन इन्हें यकीन नहीं था और आखिरी टाइम पे ये मुस्लिम लीग को छोड़ के नून को PTI की तरफ आ गए। जिस दिन परवेज इलाही ने पंजाब में वजीर आला के उम्मीदवार बने हैं PTI के, उस दिन से इमरान खान पंजाब के हवाले से बेफिक्र हो गया है। अब देखें सारी लड़ाई वो बाप बेटा वहां लड़ रहे हैं, इमरान को कोई फिक्र नहीं है, वो आराम से सत्तू पीकर बनीगाला में लेटा हुआ है और पंजाब की सारी लड़ाई जो है वो परवेज इलाही और मुनस इलाही लड़ रहे हैं। और अगर यहाँ उस्मान बुज़दार जैसा कमजोर आदमी होता तो वो इतने दिन रेजिस्ट ही ना कर पाता, अब तक इनकी PTI पंजाब में बिखर चुकी होती, टूट चुकी होती। अब तक अगर वो जुड़ी हुई है तो वो इस वजह से जुड़ी हुई है क्योंकि परवेज इलाही वहां उन्हें ठीक ठाक टफ टाइम दे रहा है और परवेज इलाही के टफ टाइम देने के पीछे मुनस इलाही है। मुनस इलाही की इतनी पावरफुल अपीयरेंस हुई है पाकिस्तान की पंजाब की पॉलिटिक्स में कि उसने मुनस इलाही की जिद या उसकी जो पॉलिटिकल एक सोच है या उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसके सामने उनके बड़े बड़े उसके खानदान के बंदे लेट गए हैं। फॉर एग्जांपल चौधरी शुजात ने बात नहीं मानी तो उसे पार्टी छोड़नी पड़ी है, ग्रुप छोड़ना पड़ा है और उन लोगों के साथ जाके बैठना पड़ा है और अपने बेटे को और उसको तारिक बशीर चीमा को लेके बैठना पड़ा है जिनके खिलाफ वो इतने सालों से लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग काफ आप देखें, आज तो नहीं बनी, ये उस वक्त बनी थी जब मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर 1999 में जब परवेज मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत पे शब खून मारा था, टेक ओवर किया था, तो मियां साहब ने उनके, क्योंकि मियां साहब को मच्छर काटते थे वहां अटक जेल में, तो मियां साहब ने रातों रात डील की। एंड ऑन दैट डे आई एम नॉट श्योर वे यू वर बट आई वॉज एट दैट टाइम इन इस्लामाबाद, मियां साहब के घर पे हम मौजूद थे सारे लोग और मैं था, हम सारे इस्लामाबाद पिंडी के जर्नलिस्ट थे वहां बैठे हुए थे और गौर अयूब साहब थे, जनरल मजीद मलिक मरहूम थे, सरताज अजीज थे, ये सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, चौधरी शुजात साहब थे और हमने सिर्फ इतना देखा कि बैग आ रहे हैं और बैग जा रहे हैं, सूट केसेस आ रहे हैं और सूट केसेस जा रहे हैं।
अच्छा।
और हम सबसे पूछे गौर अयूब से और मजीद मलिक से कि भाई क्या हो रहा है, उन्होंने कहा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अभी मियां साहब आ रहे हैं आपसे बात करते हैं, अभी मियां साहब आ रहे हैं, बस बड़ा अहम कोई ऐलान होने वाला है, मियां साहब आ रहे हैं हमें नहीं पता चला मियां साहब कहां आ रहे हैं, मियां साहब तो पता चला कि जहाज जो है वो चकलाला एयरबेस पे खड़ा था और ये बैग वहां जा रहे थे और मियां साहब वहां से ही चकलाला एयरबेस में जहाज में बैठ के और वो जद्दा रवाना हो गए। तो वो वक्त था जब इन्होंने चौधरी शुजात, गौर अयूब, मजीद मलिक, इन सब लोगों ने बैठ के कहा कि ये हमारे साथ मियां साहब ने किया क्या, अगर उन्होंने डील करनी थी और रातों रात इन्होंने अगर भागना था पाकिस्तान छोड़ के तो हमें बता तो देते, हम पागलों की तरह उनके पीछे यहां लड़ रहे हैं, खाम खा जुलूस निकाल रहे हैं, रोज मार खाते हैं, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस होता है। तो वो दिन था और आज का दिन कि 1999 से लेकर 2022 तक चौधरी शुजात साहब बदल रहे मियां बिरादरान से और इनसे दूर रहे और फिर मुशर्रफ की गोद में बैठे, फिर और सिलसिले करते रहे, फिर पीटीआई इमरान खान के साथ मिले, सारा कुछ। अगर 22-23 साल की नाराजगी चौधरी शुजात साहब ने भूल के और वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से जाके हाथ मिला के बैठ गए हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं कि मोनिस इलाही कितनी बड़ी फोर्स बन के उभरा है उनके घर में। और उनके घर का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उनके इस पूरे ग्रुप में सबसे सियाना आदमी चौधरी वजाहत हुसैन है, जो फ्रंट पे नहीं आता, बैक पे रहता है। सबसे ज्यादा पंजाब में राबते और ताल्लुक जो है वो चौधरी वजाहत हुसैन के हैं। चौधरी वजाहत हुसैन शुजात के साथ नहीं बैठा, चौधरी वजाहत परवेज इलाही के साथ बैठा हुआ है इस वक्त। और उसका बेटा हुसैन इलाही भी जो है वो भी मोनिस इलाही और परवेज इलाही के ग्रुप में है। तो ये लोग, ये खानदान पहली दफा हिस्ट्री में चौधरी जहूर इलाही के बाद अब ये खानदान जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इनका भी शिराजा बिखर चुका है और अब ये दो ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं। मैं आपको आइंदा के फ्यूचर के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मोनिस इलाही आज रेजिस्टेंस दे रहा है, और मोनिस इलाही ने जो एक भरे मजमे में इमरान खान को कहा था कि इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं, मैंने जबान कह दिया हम आपके साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, दैट डे एंड फ्रॉम दैट डे टिल टूडे मोनिस इलाही ने साबित किया है कि वो अपनी जबान का पक्का है। और इमरान खान ये चीज नोट कर रहा है और मैं आपको बता रहा हूं कि ये आइंदा इलेक्शन में ये दोनों बाप बेटा और हुसैन इलाही भी इनके साथ मिलके और वजाहत हुसैन भी ये बाकायदा पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। ये मुस्लिम लीग काफ शुजात के हिस्से में रह जाएगी और ये पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे और मोनिस इलाही पंजाब में वज़ीर-ए-आला का उम्मीदवार होगा पीटीआई का, क्योंकि पंजाब भर में पीटीआई के पास अब तक कोई कदावर बंदा सामने नहीं आया। उस्मान बुज़दार वाज अ टोटल फेलियर। आइंदा इलेक्शन में ये पीटीआई ज्वाइन करेंगे और आइंदा इलेक्शन में मोनिस इलाही पंजाब का वज़ीर-ए-आला का उम्मीदवार होगा पीटीआई का।
नाले शक्ल भी अच्छी है बाकियों को, ठीक है चलो, इतने बड़े सूबे का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए उसकी। अच्छा जी,
नहीं वो पंजाब की पॉलिटिक्स को समझता है, पंजाब में ऐसा ही बनना चाहिए आपको, जो जो बाकायदा सिर्फ नाम का चौधरी ना हो बल्कि अपने अमल से भी चौधरी साबित हो, और वो ये साबित कर रहा है। इन तमाम मुश्किलात से, ये जो उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इनसे मुश्किलात से गुजरेगा तो वो ज्यादा कुंदन बन के सामने आएगा। और हमजा तो उसके सामने खड़ा नहीं हो सका, आपको हमजा और मोनिस इलाही की बड़ी दोस्ती थी आपस में।
अच्छा,
वो एक दफा उससे अभी पूछा भी गया, मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी तो बड़ी दोस्ती थी, उसने कहा दोस्ती अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। मैंने हमजा को ट्वीट करके, हमजा को मैसेज करके बता दिया है कि भाई वी आर नो मोर फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कोई दोस्ती नहीं होती, मैं अपने उसमें ग्रुप में हूं, तुम अपने में हो, लेट्स प्ले। तो वो बाकायदा उसको टफ टाइम देगा हमजा, हमजा उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके चौधरी परवेज इलाही के जितने पंजाब में ताल्लुकात राबते, और जो पहले वो चीफ मिनिस्टर रहा तो उसने हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपने एक ग्रुप बनाया हुआ है छोटा मोटा। अब वो डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रुप है वो मजीद मजबूत होगा आने वाले दिनों में। और फिर आर्मी के साथ भी इनके ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, आर्मी भी कभी इनसे हाथ नहीं उठाएगा, और मे भी अगर इमरान खान के हालात बहुत ज्यादा आर्मी के साथ खराब हो गए तो मे भी परवेज इलाही रब्ता बन जाए आर्मी और इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के दरमियान, और ये सूरत हाल बन रही है। एक और रब्ता है, उस पर आगे चल के बात करते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये कल अचानक से मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया जी मुझे कोई एतराज नहीं है कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब आना चाहते हैं घर आ जाएं तो, और DGISPR ने तो उससे पहले कह ही दिया था कि जी उनकी हालत बड़ी खराब है, हम चाहते हैं कि ये आए, तो ये अब क्या नया ये तमाशा शुरू हो गया है? क्योंकि ये तो बड़े, आपको पता ही है, ये तो बड़े खिलाफ थे, उनकी गवर्नमेंट को कू करके हटाया था मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की। अब
अगर आप इस सवाल को ऐसे भी तो लेना कि नवाज शरीफ साहब तो खुद अपने इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है कि उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया?
दसो जी।
बिल्कुल बिल्कुल आरफा जी, अस्सलाम वालेकुम, आप भी बैठी हुई हैं, खामोशी से सुन रही हैं।
वालेकुम अस्सलाम, मैं आपकी बातचीत सुन रही हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था, आप इसको एड्रेस कर लें तो यकीनन पंजाब की असेंबली की तरफ मैं आपको लेकर के बढ़ूंगी। यानी हम मजाक बन गए हैं दुनिया के सामने।
बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, आप मजाक हम हैं। और देखें एक ऐसा बंदा जो मफरूर है, जो मतलूब है, हमारे पाकिस्तान के अदालती निजाम को मतलूब है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया हुआ है और वापस नहीं आया, और उसकी जमानत किस बंदे ने दी थी? जिस बंदे ने कहा जी कोई मसला नहीं, मैं गारंटर हूँ, ही विल बी बैक।
प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है,
हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत है वो, और हुकूमत को एक बंदा मतलूब है, और वो उस हुकूमत को, वो मतलूब बंदा हुकूमत को तलब करता है लंदन के, कल आप आ जाओ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ और मेरे सामने दोजानू होकर बैठ जाओ और मैं फिर बताऊंगा तुमने क्या करना है। इससे बड़ा मजाक हमारे साथ शायद और कोई नहीं हो सकता, लेकिन आप देखें कि पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हो रही है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन पता नहीं हमारे मुक्तदर हलके, पता नहीं उन्हें हम मुक्तदर कहते क्यों हैं, अगर उनके पास अल्लाह ताला ने उन्हें कोई इक्तदार दे ही दिया है, उनके हाथ में कोई मुक्तदर कुव्वतें उन्हें कहते हैं, अगर कोई कुव्वत है तो पता नहीं वो क्यों उन्होंने संभाल के रखी हुई है, पता नहीं कब्र में लेके जानी है उन्होंने, पता नहीं उन्होंने और कुछ प्लाजे बनाने हैं, पता नहीं उन्होंने और कोई रिजॉर्ट खरीदने हैं, पता नहीं उन्होंने अपने बच्चों के लिए कितनी सी दौलत इकट्ठी करनी है। अब ये परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जिंदगी दे, लेकिन आप देखें कि जब तक ये हुकूमत में थे बहुत अच्छे थे, स्पीच बहुत अच्छी करते थे, इंडिया के साथ बहुत अच्छे बोलते थे, फर्स्ट पाकिस्तान उनका नारा था, बहुत अच्छा एक 7 पॉइंट एजेंडा लेके आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस चक्की में उन्होंने खुद अपना मुंह भी काला कर लिया और अपनी पूरी टीम का भी मुंह काला कर लिया, और बिल आखिर जब उनसे पूछा गया कि ये 1.5 अरब डॉलर आपके अकाउंट में कैसे आया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे गिफ्ट मिला था सऊदी अरब से। भाई गिफ्ट आप कोई आसमान से उतरे थे, आप कौन थे कि आपको गिफ्ट 1.5 अरब डॉलर दे दिया सऊदी अरब ने, बिकॉज यू वर हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम, और आपके हाथ में बहुत बड़े बड़े फैसले, कुव्वत फैसला थी, आपने यकीनन कोई फेवर दी होगी सऊदी अरब को ऐसी कि उन्होंने आपके जाती अकाउंट में 1.5 अरब डॉलर डाल दिया, और आप याशी कर रहे हैं और दुबई में बैठे हुए हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ दुबई में नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट वाशिंगटन में भी है, और आपके लिए ताजा खबर, ताजा नहीं पुरानी, आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम सुनने वालों के लिए शायद ताजा होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ टोरंटो में भी है,
किंग सिटी में, और जेन स्ट्रीट पे आप ऊपर चले जाए, बहुत बड़ा उनका काइंड ऑफ फार्म है, जिसको मुझे उन लोगों के बारे में भी पता चला जो इसको रन करते हैं। मगर आपने उस सवाल की तरफ नहीं गए, देखिए पाकिस्तान में सूबों के दरमियान जब रिफ्ट्स क्रिएट होती हैं ना, या दो भाइयों के दरमियान अगर मुकाबला आता है तो उसको केयर किया, मुझे क्यों नहीं केयर किया। यहाँ से जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने बाकायदा इस पे एतराज किया है कि जब मुझसे डिक्टेशन लेने आते थे तब तो बड़ा वावेला किया जाता था, अब पाकिस्तान मुझसे कोई प्राइम मिनिस्टर डिक्टेशन लेने नहीं आता था, मगर अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद हिज एलाइज वो मेरे डिक्टेशन लेने के लिए नवाज शरीफ साहब के पास पहुंचते हैं। उन्होंने बाकायदा अपना ये पैगाम, अपनी तस्वीर, अपनी आवाज के साथ सोशल मीडिया पे दिया है।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सॉरी टू से मैं लंदन में बैठे उस बंदे का नाम नहीं लेता, मैं समझता हूं मैं उस बंदे का नाम अपनी जबान पे लूंगा मेरी जबान नापाक हो जाएगी, क्योंकि मैं 22 अगस्त 2017 का वो दिन नहीं भूलता जिस दिन उसने अपनी मां को, मेरी मां को और हम सब की मां धरती पाकिस्तान को उसने गाली दी थी। उस दिन से मैंने अपनी जबान के लिए उसका नाम लेना नापाक करार दे दिया। मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन बात उसकी कर लेते हैं। उसने अगर ये एतराज किया है कि मेरे साथ ये सलूक नहीं, क्यों नहीं रखा गया, तो उसका एतराज उसकी हद तक ठीक है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपनी स्पीच में 14 दफा मुखातिब करके उसे बुरा भला कहा, हमारे उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद को 14 दफा अपनी स्पीच में नाम लेके बुरा भला कहा, लेकिन इमरान नवाज शरीफ ने अब तक पाकिस्तान के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की कि हम कहें जी कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर दी है। उसका पॉलिटिकल स्टांस है, और वो पॉलिटिकल स्टांस वो पाकिस्तान में जब उसे हुकूमत से निकाला गया था तो वो उस वक्त लेके चला था कि मुझे क्यों निकाला। हाँ, उस वक्त हमारी कौम अगर वाकई नवाज शरीफ को समझती कि ये अपनी काज से सिंसियर है तो शायद उसे जब वो इस्लामाबाद से निकल के लाहौर गया था तो शायद लाहौर पहुंचने से पहले पहले ही इंकलाब आ चुका होता, लेकिन कौम को पता था कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, कि ये सब फेक नारे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, इन्हें क्यों निकाला गया इन्हें भी पता है, और ये फिर उनके ही चट्टे बट्टे हैं, ये फिर उनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, और वक्त ने साबित किया कि आज फिर मियां नवाज शरीफ साहब उन्हीं की गोद में हैं और वो मियां साहब को वो चीज नहीं दे रहे हैं। तो मियां साहब ने अगर वो दिल से नारा लगाया होता तो उस वक्त लोग इनकी काज के साथ खड़े होते, मियां साहब के उस वक्त भी फेक नारे थे, मियां साहब आज भी फेक हैं, मियां साहब रियलिटी की बेस पे नहीं पॉलिटिक्स कर रहे, क्योंकि मियां साहब ऊपर से धमकियां लगाते हैं, दूसरे मियां साहब छोटे मियां साहब शाम को वहां गेट नंबर 4 पे खड़े होते हैं, तो इसलिए मियां साहब की पॉलिटिक्स तो दिन ब दिन डाउन जा रही है। हुकूमत में बैठा होना, प्राइम मिनिस्टर होना या चीफ मिनिस्टर होना, और चीफ मिनिस्टर भी ऐसा कि आप इवाने इकबाल में बजट इजलास कर रहे हैं और कौमी जो पंजाब असेंबली की बाकायदा बिल्डिंग है उसमें स्पीकर पंजाब असेंबली अपने परवेज इलाही साहब अपना इजलास कर रहे हैं, और वहाँ पीटीआई के और मुस्लिम लीग काफ के लोग बैठे हुए हैं और दे आर जस्ट लाइक, अगर वो 160 हैं तो ये 165 होंगे, सिर्फ 4-5 वोटों का फर्क है। 150 एमपीए इकमान इकबाल में बैठा हुआ है, 150 एमपीए पंजाब असेंबली की असेंबली में बैठा हुआ है। ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। और फिर इससे बड़ा मजाक क्या किया हमारे इलेक्शन कमीशन ने कि उन्होंने जो इमरान खान के मुनहरिफ अरकान थे, 20 जो अवाम के वोट लेके आए थे उनको तो डी सीट कर दिया, लेकिन वो 5 जो मखसूस नशिस्तों पे आए थे उनकी जानबूझ के अपना डिस्क्वालिफिकेशन रोक के रखी हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ फेवर देने के लिए हमजा को। तो ये सारी बातें ऐसी बातें नहीं है कि हम कोई माफूकुल फितरत बातें कर रहे हैं, ये वो रियलिटीज हैं, ये वो हकायक हैं जो लोगों को सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हकायक, ये सारी ज्यादतियां, ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर जमा होती रहती हैं और फिर एक वक्त आता है कि जब कोई मुमताज कादरी और सलमान तासीर जैसा, अल्लाह ना करे ऐसा कोई हो, लेकिन फिर ऐसे वाकयात होते हैं जब आपकी सुनवाई नहीं होती गरीब आदमी की तो फिर वो ट्रिगर पे हाथ रख लेता है, ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये ज्यादतियां बहुत अरसे तक नहीं चलेंगी, ये लोग कौम देख रही है। इसलिए तो फिर अफवाहें आती हैं, परसों अफवाह थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस्तीफा दे दिया है। ये अफवाहें क्यों आती हैं, इस वजह से आती हैं क्योंकि आपको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता, लोगों को नजर नहीं आता कि हम रास्ता क्या है। रास्ता सिर्फ इलेक्शन है, अगर इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे जितना लेट होंगे इतना हमारा नुकसान हो रहा है। आज देखें, आज फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है और अजराए मजाक लोग कहते हैं जी वो पहले 30 रुपए जो बढ़े थे पेट्रोल में वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के थे, दूसरे जो 30 रुपए बढ़े थे वो जरदारी साहब के थे, और अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो 24 रुपए आज जो है मौलाना फजल रहमान साहब के हिस्से के भी बढ़ा दिए गए हैं। लोग तो इस तरह की बातें फिर करते हैं कि ये जो किस्तों में हो रहे हैं ये एक्चुअली अपना अपना हिस्सा हर कोई निकाल रहा है। तो ये इससे बड़ी और ज्यादती पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या हो सकती है। और फिर जो वजीर खजाना साहब हैं उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा। जब भी अब कौम के सामने, जब भी मीडिया के सामने आते हैं कोई ना कोई ब्लंडर करके जाते हैं।
अच्छा जी, एक सवाल मिफ्ते इस्माइल साहब ने कल नहीं बल्कि परसों एक दिन पहले इस बात का एतराफ किया, असेंबली में आके एतराफ किया इस बात का कि सी पैक के साथ जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, और मैं सही हूँ या गलत हूँ आप इसकी तस्वीर फरमाइए और हकायक को से हमें बाखबर भी कीजिए, कि परसों उन्होंने असम्बली में इस बात का एतराफ किया है कि जो डील की थी या जो कॉन्ट्रैक्ट किया था प्रीवियस गवर्नमेंट, नॉट इमरान खान से, जो पहले की गवर्नमेंट थी उसने एनर्जी सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे उनमें बहुत सारे लूप होल्स एंड फ्लॉज थे, जिसकी वजह से इमरान खान के तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे तो वो तो चलते रहे, मगर वो जो एनर्जी सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे क्योंकि उनमें फ्लॉज बहुत ज्यादा थे इसलिए वो रोके। और मिफ्ता इस्माइल इज फ्रॉम नून लीग, अगर उन्होंने ये कन्फेस किया तो ये तो बहुत बड़ा कन्फेशन है सर।
आप यही ना दे, आप यही, आप एक मिफ्ता इस्माइल की बात नहीं, आप जो इस वक्त इजलास हो रहा है बर्लिन में फैटफ का, वहाँ हमारी जो वजीर ममलकत बराए फॉरेन अफेयर्स हैं हिना रबानी खर, इस वक्त वहाँ जो पाकिस्तान को वो प्रेजेंट कर रही हैं तो वो एक्चुअली इमरान खान की पिछले 3 साल की कारकर्दगी पे वहाँ बोल रही हैं और वहाँ फेवर चाहती हैं। तो ये सारे इनके जो बयान हैं ये एक्चुअली अल्टीमेटली इमरान की फेवर में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में जाके क्या आया कि रशिया का जो इमरान का दौरा था वो उसका जाती नहीं था, ऑन बोर्ड थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी और ये हमारा पाकिस्तान का एक मुतफिका फैसला था, कौमी फैसला था और उसका दौरा जो भी था उसी का बैकलैश आया है कि अमेरिकन्स ने अब बैठ के सोचना शुरू कर दिया है कि ये शायद हमसे गलत हो गया है, ये डोनाल्ड लू और ये सारा कुछ हम जो कर बैठे हैं ये शायद गलत हो गया है। और उसकी वजह से उन्होंने ज़ाहिर है एक साइफर तो वो होता है ना जो हमारे अम्बेसडर के थ्रू पाकिस्तान आता है, हमारे इस कहने में इसमें कोई वो नहीं है, हमें नहीं होना चाहिए कोई डर खतरा खौफ कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से अपने बाहर बाहर जो रबते हैं वो भी हैं, तो वहां से कोई ऐसा क्वेश्चन है उनके पास पहुंचा है कि हाँ जी ये बिलावल जो कह के गया है ये क्या है, उसी घबराहट का नतीजा है कि DGISPR को दोबारा कहना पड़ा है कि कौमी सलामती कमेटी में ये हुआ था। भाई एक बात एक दफा खत्म हो गई, आप दोबारा उस बात को क्यों छेड़ रहे हैं, और जब आप छेड़ेंगे तो फिर दूसरे दिन शीरी मिजारी जैसी ढीठ औरत आके बैठ जाएगी मीडिया के सामने, शीरी मिजारी ने आके फिर दोबारा बात रिपीट कर दिया है। शीरी मिजारी को इस उम्र में आपने और कितना खराब करना है, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, आपने उसके वारंट निकाल दिए 1972 के केस की, जब वो 8 साल की थी, आपने उसकी बेटी को बेचारी को गली गली जलील करवा दिया, आपने उसका मोबाइल छीन के सारा मोबाइल छान मारा कि इसके अंदर क्या सीक्रेट है, और इससे ज्यादा शीरी मिजारी को आपने क्या करना है। और शीरी मिजारी पहली दफा खुल के सामने आई है, वाकई लगा है किसी को कि ये कोई बलोच खानदान की औरत है, और उसने वाकई इमरान खान के साथ खड़े होकर प्रूव किया है कि हाँ मैं मुझे जो जिस काम के लिए मैं पीटीआई ज्वाइन की थी, मेरे वाकई मेरे मेटल में कोई 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 प्योरिटी है। और उसके साथ दूसरा बंदा असद उमर साथ बैठा हुआ था, असद उमर ने इस पे भी बात की, फॉरेन कॉन्स्पायरेसी पे भी, और असद उमर ने इकोनॉमी भी बात की। और अब तक इमरान खान को जो अच्छे उसको ग्रुप में लोग मिल रहे हैं, आप देखें ये पिछले 3-4 महीने में इमरान खान को एक एक बंदा उसका जो है वो उसका प्योरिफिकेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल असद कैसर इसमें से प्योरीफाई होकर निकला है, कासम सूरी प्योरीफाई होकर निकला है इस सारे इशू में, शाह महमूद कुरैशी, सबसे बड़ा रोल शाह महमूद कुरैशी का था, अगर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन ऑफिस में उस मुरासले को दबा लेते तो शायद ये बात यहां तक ना पहुंचती। शाह महमूद कुरैशी जब तक जहांगीर तरीन पार्टी में था तो शाह महमूद कुरैशी पे उंगलियां उठती थी, अब जहांगीर तरीन और अलीम खान चले गए तो शाह महमूद कुरैशी भी खुल के खेलना शुरू हो गया, उसे यकीन हो गया कि अब मैं ही वाइस चेयरमैन हूं इस पार्टी का और मुझे काम करना है सिंसियरली, और मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये जो जितनी प्योरिफिकेशन हो रही है ये इमरान खान की फेवर में हो रही है। इमरान खान को पता चल गया कि पंजाब में उस्मान बुज़दार वाज़ अ फेलियर, अब उसने इमरान खान ने पंजाब को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया है। इमरान खान को जितने लोग थे, फॉर एग्जांपल वो शहजाद अकबर, वो दैट वाज अ फेलियर, वो फारिग हो गया, तो इमरान खान के लिए बेहतरी हो रही है। ये 20 जो उसके लोटे थे वो उसके साफ हो गए, तो मेरे ख्याल में तो फ्यूचर जो है इस वक्त मुझे नजर जो आ रहा है वो इमरान खान का नजर आ रहा है।
लेकिन हम वो कहते हैं जो और भी कुछ लोग हैं, आप भी एक्सपर्ट हैं बहुत बड़े, लेकिन और जो हमारे कुछ और भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि मिलिट्री को जितना इसने नाराज किया हुआ है लगता नहीं है कि वो इसको आने देगी। तो
अच्छा ये जो बात है ना कि लगता नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि लगता नहीं है, लेकिन लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले लगती नहीं है लेकिन बाद में हो जाती हैं। ये इमरान खान वो बंदा है जिसके बारे में जो वो थे अपना नजूमी थे, हाथ देखने वाले थे, उन्होंने कहा था तुम्हारे हाथ में प्राइम मिनिस्टरशिप की लकीर ही नहीं है।
अच्छा।
और हम में से बहुत सारे इस बात पे इस हद तक यकीन रखते थे कि हाँ वाकई नजूमियों की बात तो गलत नहीं हो सकती, ये बेशक जितना मर्जी है जोर लगाता रहे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, और फिर एक दफा बन गया ना ये। तो ये चीजें बहुत सारी लगती नहीं है, हो जाती हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप से एक बड़ी काज, एक बड़ी बड़ा एक लार्जर देन लाइफ जिसको कहते हैं ना, वो फिगर बन गया है। अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, लेकिन उसकी पीटीआई, उसकी काज और उसने एक जो लोग अपने गिर्द इकट्ठे कर लिए हैं, एक उसका क्लाउट बन गया है, वो शायद उस क्लाउट का खौफ है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जब पता चलता है कि इमरान खान कहीं मीडिया पे आ रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उनकी नींद उड़ जाती है। आज इस वक्त भी आप देखें कि इमरान खान जो ही आने आता है और शायद एआरवाई और बोल के अलावा कोई उसे दिखा भी नहीं रहा, एआरवाई लोगों को यकीन होता है कि एआरवाई पे इमरान खान आ रहा होगा, जो ही कहीं से लोगों को पता चलता है कि इमरान खान आने आ रहा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चाहे जलसे से खिताब करता है, चाहे मीडिया से टॉक करता है, चाहे सोशल मीडिया के जुमा जुमा 8 दिन यूट्यूब शुरू किए हुए बच्चे यूट्यूबर्स के साथ बैठ के बात करता है। आप पाकिस्तान में टीआरपी रेटिंग देख लें, ओवरऑल जितने लोग उस वक्त टेलीविजन देख रहे होते हैं उसमें 60% फॉरन स्विच हो जाते हैं एआरवाई पे। और उन लोगों को ये भी पता होता है कि ये अपनी स्पीच दोहरा रहा है, बार बार वही कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, बार बार वही बात करता है जी कि डोनाल्ड लू ने ये किया, सारी उसकी गुफ्तगू लोगों को जबानी याद हो चुकी है, लेकिन लोग फिर सुनते हैं उसकी बात, फिर सुनते हैं, फिर सुनते हैं। तो ये इमरान खान की मकबूलियत की वजह है, और उस मकबूलियत की रिपोर्ट्स और सर्वेस अमेरिका के पास पहुंच रहे हैं। अब इमरान खान अमेरिका के लिए सिर्फ ये मसला नहीं है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने ये कह दिया है कि रशिया का दौरा जो था वो हमारा कौमी एक फैसला था, इमरान का जाती नहीं था। एक तो उनके लिए ये हो गया कि ये क्या हमें गलत रिपोर्ट दी गई और हमसे एक गलत काम हो गया, दूसरा उन्हें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पब्लिक में सबसे ज्यादा पॉपुलर इमरान खान है, तो ये जो पब्लिक का प्रेशर है उसे आप किस तरह फेस करेंगे। तो इसलिए अमेरिका अब इस वक्त यू टर्न बनाने का सोच रहा है, और यू टर्न मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है, बजाय लोग कहते हैं कि कोई चीज नजर नहीं आती, मैं समझता हूं ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन है, पता नहीं सही होती है या गलत होती है, कल के बाद कल है, मेरे ख्याल में जरदारी साहब, मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि जरदारी साहब नून लीग के साथ मिलके नून लीग को तबाह करेंगे, زرداری صاحب آپ کو یاد ہوگا جب یہ نو کانفیڈنس موو ہو رہی تھی, ابھی نو کانفیڈنس اپروو نہیں پاس نہیں ہوئی تھی, تو زرداری صاحب نے ایک ان کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا ہیلو پرائم منسٹر ہاؤ آر یو, شہباز شریف کو کہا جان بوجھ کے اسے ہوا دینے کے لیے کہ تم تو پرائم منسٹر بن گئے, اسے ہیلو پرائم منسٹر کہہ کے مخاطب کیا, اور پھر سامنے سے رانا ثناء اللہ صاحب آئے تو اس نے کہا ہیلو انٹیریئر منسٹر ہاؤ آر یو. ابھی حکومت ان کی نہیں بنی تھی لیکن زرداری صاحب نے جان بوجھ کے رانا ثناء اللہ کو انٹیریئر منسٹر کہہ دیا, کیونکہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسا بندہ ہی انٹیریئر منسٹر بنے, اور رانا ثناء اللہ صاحب جیسے بندے سے ہی انہیں یقین تھا کہ وہ اس طرح کی سختی پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف کرا سکیں گے, اور انہیں یہ پتا تھا کہ رانا ثناء اللہ ہی کرے گا, اور رانا ثناء اللہ نے آج پھر سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ کریں گے تو کون سا ان کا وہ ہے برج جہاں سے برہان انٹرچینج پہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ انتہائی شاندار انتظام میں کروں گا ان کے استقبال کے لیے اگر عمران خان دوبارہ لانگ مارچ کریں گے تو وہ زرداری صاحب نے جو جس طرح ان کی چابی بھری تھی وہ بالکل پورا کام کر رہی ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب وہی کام کر رہے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب آج بھی پنجاب بھر میں آپ مونس الائی کی پرویز الائی کی پریس کانفرنسیں دیکھ لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے لوگوں کے خلاف یہ مقدمے کر رہے ہیں اور بے تکے مقدمے کیے جا رہے ہیں, لوگوں کے خلاف کیسز کر رہے ہیں. زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے خلاف اتنے غلط اقدامات کریں, اتنا ان کو تنگ کریں کہ ایک تو پی ٹی آئی کمزور ہو, ظاہر اس کے لوگ جو بھاگنے ہیں کمزور لوگ بھاگ جائیں گے تو پارٹی کمزور ہو جائے گی نا پکڑ دکڑ سے اور گرفتاریوں سے, ایک تو پی ٹی آئی کمزور ہو, دوسرا بدنام مسلم لیگ نون ہو, اور مسلم لیگ جب بدنام ہوگی تو پبلک میں اس کا امیج خراب ہوگا اور پبلک میں اس کے ووٹ بھی کم ہوں گے, تو جب یہ دونوں کمزور ہو جائیں گے تو جب وہ سمجھیں گے کہ مسلم لیگ نون کو اب میں نے بالکل کنارے لگا دی ہے, اب وہ ان کی طاقت نہیں رہی, تو عین اس موقع پہ زرداری صاحب ریاض ملک صاحب جیسے دوستوں کے ذریعے عمران خان کے ساتھ آ کے مل کے بیٹھ جائیں گے, اور سیاست میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتی, اور عمران خان اس وقت تک اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آج جو عمران خان کہتا ہے کہ یہ سارے چور ہیں ڈاکو ہیں, میں کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, میں سوچ بھی نہیں سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ایک وقت آئے گا جب عمران خان دیکھے گا کہ میری پارٹی تتر بتر ہو رہے ہیں, لوگ کمزور ہو رہی ہے پارٹی, اور اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ میں اکیلے حکومت نہیں بنا سکتا, تو اس نے عمران خان نے کہنا ہے کہ جی بڑی برائی سے چھوٹی برائی بہتر ہے, السلام علیکم بلاول بھٹو, یو سیوڈ می فرام دیٹ رشین اینڈ دس اینڈ دیٹ, ہنا ربانی نے مجھے فلان جگہ ہیلپ کی, بلاول نے یہ کی, اور یہ ترقی پسند ہیں, ماڈرن لبرل سوچ ہے ان کی, ہم تو بہت قریب ہیں, اور بی بی کے ساتھ میری آکسفورڈ میں میٹنگ ہوئی تھی, فلان جگہ امریکہ میں ہوئی تھی, اور ہمارے خیالات بہت ملتے ہیں, اور ایکچولی زرداری بھی ایک لمبی لسٹ بنا لے گا نواز شریف وغیرہ کے خلاف, تو میں تو نہیں چاہتا تھا آپ کے خلاف, انہوں نے یہ کیا وہ کیا, تو یہ الٹیمیٹلی دیکھیے گا کہ زرداری صاحب جب سمجھیں گے کہ نون لیگ کا کباڑا ہو چکا ہے تو اس وقت وہ راستہ نکالیں گے, اور سیاست میں کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے, اور عمران خان اگر تو سٹرانگ رہا تو کبھی بھی زرداری کے ساتھ نہیں ملے گا, لیکن اگر کمزور ہو گیا پولیٹیکلی تو عمران خان کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ وہ زرداری کے ساتھ ہاتھ ملا لے, اور زرداری صاحب موج کریں گے جس طرح آج ان کے بیٹا صاحب وزیر خارجہ ہیں, کل الیکشن کے بعد کوئی پتہ نہیں عمران خان پرائم منسٹر ہوں اور وزیر خارجہ پھر بلاول ہو, اٹ از پاسبل ان پاکستان, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, زرداری صاحب نے کہا ایک زرداری سب سے یاری, زرداری صاحب نے یہ خود اپنے منہ سے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے ایک زرداری سب سے یاری, تو یہ سب سے یاری جو ہے یہ بس گھوم پھر کے دیکھیے گا کہاں آتی ہے.
ٹھیک ہے, یہ ہم کچھ کالز لیتے ہیں فیاض بھائی, کچھ لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ کالز لیتے ہیں آپ کے لیے,
اور یہ بتاتے چلے کہ 4166201778 ہمارا فون نمبر ہے, 4166201778 پہ کال کر کے آپ فیاض ولانا سے بات کر سکتے ہیں. جی ہلو, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, میرا نام خالد میر ہے.
جی خالد بھائی,
میں ایک سوال ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب تک ہم جو ہے یہ جنرل گریسی والا بہیویئر کیوں نہیں کنٹرول کر سکے.
ٹھیک ہے, ہاں جی دسو.
شکریہ جی.
ان کا کہنا یہ ہے کہ آرمی کا اتنا عمل دخل کیوں زیادہ ہے, ہم اس کیوں نہیں کر سکے.
جی,
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب پاکستان بنا تھا تو ہم ایک کمزور ملک تھے, چھوٹا ملک تھے, ہمیں آرمی کی ضرورت تھی اپنے اس کے لیے دفاع کے لیے, اور پھر وقت گزرتے گزرتے ہمارے حکمران نالائق نااہل حکمران تھے, انہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ جو آہستہ آہستہ ہم اپنے ہاتھ سے ہاتھ میں دے رہے ہیں, تو یہ ایک دن یہ جو ہمارے لوگ محافظ ہیں, ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں, یہ ایک دن یہ آئے گا کہ ہمیں اپنے ब्यूरोक्रेट 17वें ग्रेड का एक एसी और एक सेक्शन अफसर भी लगाने के लिए उनकी समरियां वेट करानी पड़ेंगी डीजीआईएसआई से। ये हमारे हुक्मरानों की कमजोरी, नालायकी और नायाली है कि वो हमारे सर पे चढ़ते जा रहे हैं, हालांकि उनका काम सिर्फ सरहद पे खड़ा होना और वहां सरहदों की हिफाजत करना है। इससे ज्यादा हमने फॉर एग्जांपल आईएसआई जो बनी थी तो वो बेसिकली इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस थी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के अंदर की अंदरूनी जो इंटेलिजेंस थी उस पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये देखा कि जब प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट्स को रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच से और आईबीसी इंटेलिजेंस ब्यूरो से नहीं मिलती थी, तो उन्होंने कहा जी कि आईएसआई के अंदर एक ग्रुप बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं, पॉलिटिकल सेल उसका नाम होगा, और वो आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी जो मुल्क में हो रही है उसकी रिपोर्ट देती रहेगी। तो बेसिकली ये एक छोटा सा सेल बनाया गया था आईएसआई के अंदर, और फिर देखते देखते वो सेल इतना बड़ा अजदहा बन गया कि इस वक्त आईएसआई का काम सिर्फ लगता है कि सियासतदानों पर नजर रखना है। अपने उन्होंने इंटरनल उसके लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी इदारों को जिम्मेदारियां दे दी हैं, और आईएसआई ने टोटली जिम्मेदारी इसकी पॉलिटिकल की ले ली है, और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और उसमें चले गए आईएसआई वाले। वहां उन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ा नाम कमाया, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानी कौम ही है, उसमें पाकिस्तानी लोग हैं, और पाकिस्तानी लोग इंतहाई जहीन हैं, इंतहाई समझदार हैं, इंतहाई हार्ड वर्किंग है। उन्होंने हार्ड वर्क किया और अपना नाम बनवाया। अब ये नलायकियां जो हैं ये तो हमारे हुक्मरानों की हैं। फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ साहब से अगर कोई पूछे कि भाई आपको कोई कह रहा है कि आप वेट कराएं समरियां, तो आप क्यों करा रहे हैं? दूसरी तरफ इमरान खान, लोग कहते हैं जी कि आप इमरान खान के हक में बोलते हैं। अब मुझे बताएं मैं इमरान खान के हक में बोलूं कि ना बोलूं, कि जब डीजीआईएसआई का तबादला उन्होंने इमरान खान से पूछे बगैर किया तो इमरान खान खड़ा हो गया। उसने कहा भाई डीजीआईएसआई अगर मेरे अंडर है तो मुझसे पूछ के करें। मैंने अफगानिस्तान में बड़ा अमेरिका के साथ मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि वहां आपको हम स्मूथ ट्रांजिशनिंग होगी, हम आपको वहां से निकलने में हेल्प करेंगे, और हमारी आईएसआई वहां हेल्प कर रही है कि वो खैर खरीत से यहां से निकल जाएं, और जितने वहां अमेरिकन आर्मी के और उनके जो मुआवन कार थे और राबता कार थे उनको भी हम खरीत से यहां से निकाल देंगे। इस वक्त भी इस्लामाबाद के 3 होटल, मैं नाम लेके आपको बताता हूं, बेस्ट वेस्टर्न होटल, इस्लामाबाद रेजेंसी होटल और मार्गला होटल, पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो चुके हैं 100% बुक्ड है। यूएन का इदारा है IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, उनके पास बुक है। एक त्यारा कल आ रहा है वैंकूवर 330 अफगानी मुहाजरों को लेके इस्लामाबाद से। मेरे पास एक एक उनके त्यारे की पूरी एग्जैक्ट मैं नंबर्स आपको दे सकता हूँ कितने लोग वहां से आ रहे हैं, और वो वहां कई लोग 6-6 महीने से उन होटलों में ठहरे हुए हैं। 2 हफ्ते पहले एक त्यारा, चार्टर त्यारा अफगानियों का कैनेडा आया, एयरपोर्ट पे जब पहुंचे और एयरपोर्ट पे हमारी कैनेडियन हाई कमीशन का स्टाफ मौजूद था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का स्टाफ मौजूद था, यूनाइटेड नेशन का मुतलका स्टाफ मौजूद था, FIA वाले मौजूद थे। जब जहाज में सवारियां डालने लगे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक कपल के साथ एक न्यूली बॉर्न बेबी है। उन्होंने कहा जी ये रात को पैदा हुआ है। जिस रात को चार्टर्ड त्यारा आना था उस रात को एक बच्चा पैदा हो गया एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खड़े खड़े उन्होंने कहा इसका नाम क्या है, हम अभी आपको पेपर बना देते हैं, इसके वीजा यहाँ एयरपोर्ट पे इसका लगाते हैं। उन्होंने कहा नाम क्या है, तो बच्चे के जो माँ बाप थे वो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए। उन्होंने कहा अभी तक तो हमने इसका नाम रखा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आप नाम नहीं रखोगे तो हम इसका वीजा कैसे लगाएंगे कनाडा का। फिर वहां खड़े खड़े बच्चे का नाम रखा गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, खड़े खड़े वहां कैनेडियन हाई कमीशन का स्टाफ वहां मौजूद था, खड़े खड़े उस पेपर पे उसका वीजा लगाया गया और वो बच्चा फिर उस चार्टर्ड त्यारे में यहां पहुंचा। इतनी बड़ी तादाद में हम उनकी खिदमत कर रहे हैं अफगानियों की और अफगानियों के जितने इतिहादी थे, ये एक एग्जाम्पल मैंने दी। इसके अलावा वहां पता नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट था वो अफगानिस्तान से अमरीका और उसके इतिहादियों का निकलना। इमरान खान ने कहा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है अमरीका को कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और जनरल फैज अमीर जो DGISI वो सारा लुक आफ्टर कर रहा है। आप अचानक मुझे बताए बगैर DGISI चेंज कर देते हैं, अब नया बंदा जो आएगा उसे 2 हफ्ते तो चीजें समझने में लगेंगी। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? और इमरान खान का एक जेन्युइन स्टांस था, इमरान खान खड़ा हो गया, लेकिन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस बात को माइंड कर गए और फिर इमरान खान ने अपनी बात मनवा के छोड़ी। कुछ उनकी मानी गई, कुछ इनकी मानी गई, लेकिन सिविल सुप्रीमेसी का आगाज उस दिन से हो जाना चाहिए था अगर ये सारे खड़े हो जाते इमरान खान के साथ। लेकिन क्योंकि हमें हर बंदा अपने पेट से आगे, अपनी नाक से आगे नहीं देखता, इसलिए इन्होंने फिर कुछ नहीं किया, उसकी हेल्प नहीं की, कोई उसको सपोर्ट नहीं किया। सिविल सुप्रीमेसी उस दिन फारिग हो गई थी और सिविल सुप्रीमेसी उस दिन फारिग हुई है अब, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि ठीक है आइंदा हम 17वें 18वें ग्रेड का जो अफसर लगाएंगे उसकी भी समरी आप वेट करके भेजेंगे।
فیاض ہم کو ایک کمرشل بریک لینا ہے, اس کے فوری بعد پروگرام میں واپس آئیں گے. جو کالرز میرے ساتھ ہیں وہ ویسی رہے. اور
فیاض بھائی اس چیز کا آپ خیال رکھا کریں, یہ تو دونوں شہزادے جو ہیں نا یہ ٹنوں کے بیٹھتے ہیں جب آپ کی باتیں سنتے ہیں, آپ کی باتیں اتنی مسحور کن ہیں اور جب وہ ان سائڈ اسٹوریز ملتی ہیں تو وی ہیو ٹو ٹیک ٹو کمرشل بریکس ان بٹوین دی آور ٹو لک آفٹر دا ایکسپینس.
ایشین فوڈ سینٹر انڈین کینیڈین صاف ستھری گروسری دے نال
کار کار وچ مشہور ہو چکیا ایشین فوڈ سینٹر ہمیشہ سستے ریٹ تے ودیا سیواواں دین لئی وچن بد ہے.
اپنے ایریے وچ پیندے کسی بھی سٹور وچ جاؤ گے تو ضرور بچت پاؤ گے.
ودھیری جانکاری لئی ایشین فوڈ سینٹر دا اکو ایک نمبر یاد رکھو 416-740-3262.
ایشین فوڈ سینٹر 416-740-3262. ایشین فوڈ سینٹر.
السلام علیکم ایوری ون, مائی نیم از ناصر شاہ. آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں سے ہم مورگیجز کر رہے ہیں, لونز کر رہے ہیں اور کمرشل مورگیجز کر رہے ہیں. اگر آپ کو کسی طرح کی مورگیج چاہیے تو گارنٹی آپ کو بیسٹ ریٹ آفر کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کا بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں. اور کمرشل مورگیج کبھی بھی آپ کو چاہیے کسی طرح کی, ہوٹل موٹل گیس اسٹیشن یا کوئی فرنچ لینی یا کسی پلازے میں کوئی یونٹ بائی کرنا, تو اس کے لیے بھی ہمیں کال کریں. اور اگر آپ کو بزنس لائن آف کریڈٹ چاہیے تو اس کے لیے بھی ہمیں کال کریں. 647-741-9000 647-741-9000.
شیراز شفیق جن کے پاس ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز, لاسٹ منٹ کلوزنگز ہوں یا ڈیفیکلٹیز, سبھی کے لیے شیراز شفیق 416-502-8000 لائسنس نمبر 10845 انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ.
ارے بھائی ہم جانتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے, جیسے ریڈ لائٹ سگنل, بینک کی لائن, اور ہر روز وہ کافی کی لائن. مگر ہم کرتے ہیں آپ کے اپنوں کے بینک اکاؤنٹس پہ منی ٹرانسفر ان سب سے جلدی, یعنی رسید کٹی نہیں اور منی ٹرانسفر ڈن, صرف اور صرف ایبل ایکسپریس کی ریلائبل سروس کے ساتھ. پاکستان میں ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر سروسز, ہماری پہچان ایبل ایکسپریس. فار فردر انفارمیشن کال ناؤ 416-230-4444. ایبل ایکسپریس.
عائشہ یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے.
10 جگہ کیوں, ایک ہی جگہ ہے فاطمہ گروسرز.
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں فاطمہ گروسرز, مسالے, تازہ سبزیاں, پھل, حلال گوشت, میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی. گروسری کا سارا سامان ساز و آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی. میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز, 512 برسٹل روڈ, ویسٹ آف مسز ساگا, 9058487000. فاطمہ گروسرز, سب سے زبردست.
ویلیج ٹیز اونٹاریو کا سب سے بڑا پاکستانی بفے 40 سے زائد آئٹمس کے ساتھ. انجوائے کریں ہمارے ڈیلیشیس مینی کو, کڑھائی, کریز, باربیکیو, باربیکیو پلیٹر, رولز اینڈ مچ مچ مور. اور اب ڈیلی ڈنر بفے اور ویکینڈ برنچ بفے بھی. پارٹی رومز یا کیٹرنگ سروسز کے لیے کال 9052323663, 647-774-4888. ویلیج ٹیسٹ.
اگر ہو آپ اپنے فائنینشیل فیوچر سے پریشان تو کال کریں مجھے, میرے مہربان بنا کر کے دوں گا آپ کو ایسا پلان کہ آپ کی فائنینشیل پلاننگ ہو جائے گی آسان. مسئلہ ہو چاہے آپ کی مورگیج اتارنے کا, بچوں کی ایجوکیشن کا, یا آپ کی اپنی ریٹائرمنٹ کا, میرے پاس ہیں اویلیبل ایسے پلان جو میک شیور کرتے ہیں کہ آپ کو ملے اچھی بچت, لوئسٹ ریٹس, کیونکہ میں ڈیل کرتا ہوں تمام کی تمام انشورنس کمپنیز کے ساتھ. فائدہ اٹھائیے کال کر کے میرے لمبے ایکسپیرینس کا ایٹ 905-607-5000. میں ہوں فضل ودود فرام انشور پرو فائنینشل سروسز. سی یو سون.
والیا ٹریفک لیگل سروسز سے جناب آر ایس والیا.
کیئرلیس ڈرائیونگ,
سپیڈنگ یا پھر ایکسیڈنٹ,
فیل ٹو ریمین اسٹاپ ایٹ دا سین,
ریڈ لائٹس یا پھر سیٹ بیلٹس,
پرمٹ ڈرائیو وداؤٹ انشورنس,
ریسنگ, اسٹوڈنٹ ڈرائیونگ یا پھر کاٹ وائل یوزنگ فون,
اسپیڈنگ,
آر ایس والیا آپ کی ٹکٹ سے نجات دلوائیں گے اور آپ کے پوائنٹس بھی سیو کریں گے. 9054542112, 4542112.
جی صاحب ناظرین ویلکم بیک اگین اینڈ صاحب نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. جی ہلو السلام علیکم. ہلو اوکے نیکسٹ کال. جی ہلو السلام علیکم. ہلو اوکے نیکسٹ کال. جی ہلو السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی کون بات کر رہے ہیں؟
جی محمود بات کر رہا ہوں. فیاض صاحب سے بات کرنی تھی.
جی جی فرمائیے.
جی فیاض صاحب السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ آپ جیسے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہے ہیں یا دوسری غیر قانونی کام ہو رہے ہیں تو اب ہماری عدالتیں کہاں پہ ہیں؟ تو ان کے لیے کوئی فیصلہ اب کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا. عدالتوں کو کوئی خیال نہیں آ رہا کہ جو جیسے اب 25 ممبر کو ان کی کینسل ہوئی ہے ممبر شپ, اس کے اوپر بھی وہ فیصلہ نہیں دے رہے کہ بھی آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. تو اس پہ ذرا پلیز روشنی ڈالیں. شکریہ.
بہت شکریہ سر. جی صاحب.
جی جناب یہ محمود صاحب نے کال کی, ان کی بات بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں نا کہ عمران خان اگر یہ اس دن اسمبلی میں وہ قاسم سوری والا کام وہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ وہ کام, عمران خان کو اتنا میں نہیں کہتا کہ بہت کوئی سمجھدار آدمی ہے, غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, لیکن ایک نظریہ ایک سوچ دے کے چل رہا ہے اور آنےسٹ ہے اپنی کال سے, اپنے اس سے, ملک سے, لوگوں سے. جنرلی ہر بندہ کہتا ہے دیانت دار ہے, تو یہ بہت بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں ایک لیڈر میں. ایک لیڈر دیانت دار ہو, مخلص ہو, کام کرنے والا ہو, اور سب سے بڑی اس کی جو اہم بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے اپنے بچوں کی طرف سے وہ بے فکر ہے. اس کے بچوں کو ان کی ماں نے سنبھالا ہوا ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہے. اور اگر ہو بھی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے جی کہ میں ان کے لیے یہ بنا دوں, ان کے لیے وہ بنا دوں. اس نے کہہ دیا ہے کہ بنی گالا کا یہ میرا گھر ہے, اس کی جب میں مطلب اللہ اسے زندگی دے, اس نے کہا جب میں یہاں نہ رہوں تو اس کا 75% اسے بیچ کے وہ شوکت خانم میں دے دیجیے گا, باقی 25% شاید اس نے بچوں کا کہا ہے یا جو بھی کیا ہے. تو اسے کوئی نہیں ہے, اس نے بچوں کو باہر ماں کے پاس وہ رہ رہے ہیں, باقاعدہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بڑے بچے نے کہا کہ میں نے اسلامک ہسٹری میں ایم اے کرنا ہے, عمران خان نے کہا کرو, اور اس نے اسلامک ہسٹری میں ایم اے کیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ اپنی ہماری مریم نواز, اس کے ماں کی خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بن جائے, تو یہ میرٹ میں ایف ایس سی میں یہ میرٹ پہ پنجاب کے کسی کالج میں داخل نہیں ہو سکی تھی. اس کے بعد پھر اسے آرمی میڈیکل کالج پنڈی میں اسے ایڈمیشن کرایا گیا. اب آرمی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, وہاں وردی پہننی پڑتی ہے, سختی ہوتی ہے, اور وہاں ڈرل ہوتی ہے. ڈرل میں بے شک آپ کیپٹن ڈاکٹر بننا ہوتا ہے آپ نے, لیکن آپ کو ڈرل حوالدار کراتے ہیں آرمی کے, اور وہ بڑے سخت ہوتے ہیں, اور اس کو ان کو سر کہنا پڑتا ہے اور ان کو ان کی بات سننی پڑتی ہے. تو وہاں تھوڑی سی سختی ہوئی اسے 4-6 مہینے. تو اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو کہا کہ میں یہاں نہیں پڑھ سکتی آرمی میڈیکل کالج میں. پھر پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ اس کی یہاں سے ٹرانسفر ہوئی اس کی اسٹڈی لاہور کے کسی پنجاب کے کسی میڈیکل کالج میں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت وہاں پروفیسر تھیں یا پرنسپل تھیں. تو یاسمین راشد وہ کہانی آگے سے سناتی ہیں کہ جب یہ وہاں آئی تو اس پہلے تو وہ میرٹ کے خلاف تھا سارا کہ تو میرٹ پہ نہیں آ سکی, لیکن تو پہلے آرمی میڈیکل کالج میں گئی ہے, پھر وہاں سے ٹرانسفر کرائی ہے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہاں سے آرمی میڈیکل کالج سے سول میں لوگ آئے ہوں اور وہ بھی جو میرٹ پہ پورے نہیں اترتے, اور وہاں پھر یہ نہیں پڑھ سکی, اور وہاں اس نے میڈیکل کی تعلیم دوسرے سال ہی چھوڑ دی. تو یہ ایک طرف کی یہ اولاد ہے, اور دوسری طرف کی وہ اولاد ہے کہ جو بچہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ایم اے اسلامک ہسٹری کرنا ہے, اور بات کرو تم, اور اس نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے, اور اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کل وہ بچہ اگر میکڈونلڈ پہ جاب کرے یا کسی واقعی کسی لندن کی یونیورسٹی میں ایز اے ریسرچر کام کرے, ایسوسیٹ ٹیچر کام کرے, اسسٹنٹ کام کرے, یا ایز اے کلریکل سٹاف کرے, اسے کوئی فکر نہیں ہے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ جو اپنی محنت کریں گے, جتنا پڑھیں گے, جتنا ان میں عقل شعور ہوگا, وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کر رہیں گے. وہ عمران خان وہ بندہ نہیں ہے کہ جو زبردستی حمزہ جیسے بندے کو ہمارے اوپر پورے پنجاب کے اوپر مسلط کرے. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ, مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ میرا بیٹا مولانا اسد محمود چاہے وہ ڈسکو ڈانس کرتی ہے, اس کی ویڈیوز لیک ہوئی ہوئی ہوں, اس کے باوجود وہ کہتا ہے جے یو آئی کو لیڈ تو مولانا اسد محمود ہی کرے گا. چاہے اس سے ہزار ہاں درجہ بہتر لوگ جے یو آئی میں موجود ہوں, لیکن نہیں, کیونکہ یہ میرے ابا کی جماعت مجھے ملی تھی, میں نے آگے اپنے بچے کو دینی ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے میں نے ہتھیائی تھی اپنی بیوی سے, اب یہ آگے میرے بچے کو ملنی چاہیے. چاہے بچے میں وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے, اسے ملنی چاہیے. اور زرداری صاحب کا ایک اور کمال بھی ہے, انہیں ابھی بھی یہ یقین نہیں ہے کہ بلاول واقعی ٹیک اوور کر سکے گا, اس لیے انہوں نے آصفا کو آہستہ آہستہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے. اور آصفا میں میرے خیال میں بلاول سے بھی زیادہ جراثیم ہے. آصفا شاید زیادہ بہتر لیڈر, پبلک لیڈر کے طور پر آئے سامنے, تو وہ آصفا پہ بھی برابر کام کر رہے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اکٹھے ہونے کے باوجود لڑائی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی مریم جو ہے میری گدی سنبھالے مسلم لیگ نون کی صدارت کی, اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں, گدی کا حق تو میرا ہے, और मेरे बाद मेरे बेटे का हक है। तो हमारे यहाँ ये सिलसिला है, जब तक हमारे लोग ये नहीं सोचेंगे कि इस अपने अपने घर के अलावा अपनी नाक से आगे भी कुछ है, उस वक्त तक ना हमारी अदालतें जागेंगी, ना हमारी आर्मी जागेगी, ना हमारे और कोई इदारा जागेगा। अब FIA के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन फॉर एग्जांपल सिकंदर सुल्तान राजा, क्या उसे नजर नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ी मसला है कि एक बंदा अपनी सर्विस पूरी कर चुका है, रिटायरमेंट के बाद आप उसे दोबारा क्यों इतने इंपॉर्टेंट ओहदे पे लगाते हैं? आपने हमारे तारीख में मजाक देखा था आपने कि 1993 में हमारे पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन लगाए गए थे, वो क्या साहब थे वो जो फॉरेन ऑफिस से आए थे, नवाब भोपाल के थे,
वो नवाब कलाबाग के बेटे थे,
नवाब ऑफ भोपाल के थे, नवाब ऑफ भोपाल के थे, वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लगे थे 1993 में,
28 साल कुछ ऐसे
28 साल जॉब फॉरेन सर्विस की, एज ए फॉरेन सेक्रेटरी वो रिटायर हुए थे, 28 साल जॉब करने के बाद वो 1993 में पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन लगे और शायद 2002 तक वो रहे। एक बंदा अपनी जब रिटायरमेंट की एज पे पहुंचता है तो वो ऑलमोस्ट उसमें जूस खत्म हो चुका होता है, उसकी सलाहियतें, उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी हर चीज वो उस तरह नहीं होती, इसलिए रिटायरमेंट का एक लफ्ज बना हुआ है कि आप परमानेंटली घर जाएं और रिटायर्ड हो गए, अब आप रेस्ट करें और अपना जो आपने जिंदगी में किया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये आपकी ग्रेजुटी है, ये आपकी पेंशन है, अब आप अपने पोते पोतियां जाके खिलाएं और अपनी जिंदगी की जो अचीवमेंट है उसके लिए कोई बुक लिखें या अपने लोगों को अपने तजर्बे से कोई बात करके लोगों को समझाएं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, क्योंकि ये हमारा वफादार रहा है सर्विस के दौरान, हम दोबारा उसे बुला लेते हैं। इसी तरह सिकंदर सुल्तान राजा साहब 22वें ग्रेड में रिटायर हो चुके हैं, मियां साहब के क्यों चाहते थे, मियां साहब ने वापस उन्हें आके फिर बुला लिया।
शहरयार खान की बात कर रहे हैं या ऐसा?
बिल्कुल शहरयार खान बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, शहरयार खान साहब, और वो जब चेयरमैन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लगे थे और आखिर में जब उन्हें फारग किया गया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से, तो उनकी हालत ये थी कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक दिन उतरे जहाज से और बाहर निकले तो आगे उनका स्टाफ और गाड़ी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की उन्हें रिसीव करने आई थी, तो वो स्टाफ सारा देख रहा है और साहब किसी और गाड़ी में बैठ के जाके उन्हें फिर पकड़ के लाया गया कि सर आपकी गाड़ी है। उस बंदे को ये नहीं पता था, चलते हुए उन्हें 7 बंदों की 2 हेल्प चाहिए होती थी, वो बंदे और प्रेस मीडिया में हमारे शकील शेख और शकील अवान और जितने हमारे स्पोर्ट्स के मोहिउद्दीन शाह और नासिर राजा और जितने स्पोर्ट्स के लोग थे, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो वो हंसते थे, वो कहते थे ये शहरयार साहब से पूछते हम कुछ और हैं, जवाब आगे से कुछ और देते हैं, क्योंकि वो बेचारा अपने सेंसेस में ही नहीं था बंदा।
फयाज साहब एक क्विक ब्रेक लेना है, क्विक ब्रेक लेंगे, उसके फौरी बाद 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनकी बात करेंगे।
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522, 302-2522।
Grill and Chick, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive, Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500, Grill and Chick.
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन, फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
जी साहब, नाज़रीन वेलकम बैक अगेन, एंड साहब 7:48 और 1 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुका है और फयाज हमारे साथ एक दो कॉलर्स और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम आजाद भाई,
कौन बात कर रहे हैं सर?
रिजवी बात कर रहा हूँ, क्या हाल है?
जी रिजवी साहब, फरमाइए।
आजाद भाई, मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो हमारी जितनी भी खराबी है ना, इसका मेन कॉज जो है हमारी अदालतें हैं। अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी बोलिविया से कि जी उन्होंने, अदालत ने आर्मी चीफ को और सदर को 10-10 साल की कैद सुना दी, उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर की के खिलाफ जो है ना को करने की कोशिश की थी गैर कानूनी तौर पे। जिस दिन हमारे पास ये हो गया ना उस दिन पाकिस्तान सही हो जाएगा, क्या कहते हैं फैया साहब?
साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आपने बिल्कुल सही नब्ज पे हाथ रखा है। रिजवी साहब का कहना बिल्कुल सही है कि हमें ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा, लेकिन कौन करेगा? मुझे हमारी जो मौजूदा हमारी अदलिया है इससे तो मुझे कोई तवक्को नहीं। ये जितने जितने मर्जी है ये बन बन के आते रहे, इसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस जब लाहौर में उनमें से एक साहब होते थे, और लाहौर में हर साल सीजन जब आता था तो हज सीजन से दो महीने तीन महीने पहले वो अपने किसी बंदे से अखबारों में खबर लगवाते थे कि वजारत मजहबी उमूर में हज और उमरे की वीजों में बड़ी गड़बड़ हो रही है, खबर छपती थी अखबार में, और उसके बाद वो सेक्रेटरी हज, डायरेक्टर हज और सेक्रेटरी मजहबी उमूर और उसको मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर उसको तलब कर लेते थे अपने लाहौर हाई कोर्ट में, और तलब करके उन्हें डांट डपट की जाती थी, और उसके बाद वजारत मजहबी उमूर वाले बताते थे कि जनाब डांट डपट हो गई है, अब हफ्ते बाद हमें लाहौर के फलां फलां ट्रैवल एजेंट के फोन आ जाएंगे और वो आएंगे और वो हमसे कोटा लेके चले जाएंगे, बात खत्म। ये हमारी अदलिया है, ये हमारी अदलिया है, ये हमारी अदलिया के मौजूद जज साहबान है कि जिन्होंने अपने चहेते ट्रैवल एजेंटों को हज और उमरे के कोटे दिलवाने के लिए वजारत मजहबी उमूर के तमाम अफसरान को लाहौर में बारहा हर साल ये तलब करते थे, डांट डपट करते थे, और हफ्ते बाद उनके बंदों को उनके पसंद के ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स को कोटा मिल जाता था, बात खत्म हो जाती थी। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है चीजें।
जी जी बिल्कुल।
सब नाजरीन जून 26 को अपने कैलेंडर पे मार्क कर ले, खबर हार पाकिस्तान का बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, खबर हार। खबर हार के रुए रवा जनाब आफ्ताब इकबाल साहब और 16 इनके टीम मेंबर्स जो हैं वो तमाम टोरंटो पहुंच रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में, डिनर के साथ हंगामा खेज प्रोग्राम होगा। आफ्ताब इकबाल एंड खबरहार की पूरी टीम। टिकट्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं 416-526-6800, 416-526-6800 इनका फोन नंबर है।
तो माजिद भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि आफ्ताब साहब जो बड़े उस्ताद हैं वो भी फियाज भाई को अपना उस्ताद मानते हैं।
अच्छी बात।
कैन यू इमेजिन।
हम लास्ट कॉल ले लेते हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हेलो वालेकुम सलाम।
जी
फियाज साहब मैं हुमायूं शेखर कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि आजकल जो है ना सबसे बड़ा गुनाह वो सच बोलना है। तो आप जब पाकिस्तान जाए ना तो इस तरह करें, क्योंकि वहाँ आपके ऊपर बकरी चोरी माजी या साइकिल चोरी का इल्जाम लगाएंगे तो हो सकता है अगर बेहतर महसूस करें तो 100 बिलियन रुपए का गबन मार के जाए, हो सकता आपको भी चीफ एग्जीक्यूटिव या मिल जाए। और एक बात आपने बड़ी अच्छी की थी मरियम नवाज साहब के तहत, आपको पता जो हुक्मरान होते हैं ना तो उमर बिन अब्दुल अजीज को वो कहते हैं पांचवा खुल्फा राशिदीन में से। तो मैंने अपनी भाई बहन लक्की भाई ने सॉरी लक्की कह बहन अल्लाह रखी को और माजिद जमाल साहब को ईमेल की है कि वो जो मीर जाफर और उसकी बेबी थी ना मुन्नी बेगम उनका क्या था, तो आजकल क्या हो रहा है, आप वो बड़ा स्टडी करके वो बताएं। तो मुझे लगता है कि आप ने जो है ना बहुत ज्यादा कच्चा वो खा लिया थोम, आपके मुंह से बगावत की बू आ रही है। तो तब पाकिस्तान जाए तो खुदा के लिए ध्यान से जाए जी, आयतल कुर्सी पढ़ के जाए चारों कोल, और पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ भी आपके पीछे लोग जो है ना वो काफी पड़ेंगे।
बहुत शुक्रिया,
थैंक यू,
महफूज रखे।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
इसके मतलब आप कमेंट कर दे, और खास तौर पर वो जो है मुन्नी भाई और वो जो है मीर जाफर का, क्योंकि जो आखिरी था ना हमारा गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट पहला प्रेसिडेंट उसका पड़पोता था सिकंदर मिर्जा।
जी जी बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
यस
जी
हुमायूं शेख साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। ये लोगों का हमारे लोगों का जो गुस्सा है ना ये कोई गुस्सा एक दिन में नहीं, लोग इतना गुस्सा लोगों के अंदर आया इसमें एक टाइम लगा है। मुझे मैं अपना चंद साल पहले जब यहाँ टेलीविजन का प्रोग्राम शुरू किया तो मुझे लोगों ने फोन करके लोगों ने कहा जी आप बहुत गुस्से में होते हैं प्रोग्राम में, जब आप बात करते हैं आप बहुत गुस्से में होते हैं, आपके चेहरे पे हम स्माइल नहीं देखते, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि हसन निसार साहब और हमने हसन निसार साहब बहुत पुराने साथी हैं लेकिन हमने भी इकट्ठे एक अखबार में काम किया, तो हसन निसार साहब से किसी ने पूछा कि आप जो है वो इतने गुस्से में क्यों रहते हैं और इतनी गालियां और इतना सख्त क्यों लिखते हैं। तो हसन निसार साहब ने कहा कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं इन्होंने गुज़श्ता 30-35 सालों के दौरान हमारे अंदर अपनी उनकी जो अलल्ले तलल्ले कोताहियां गलतियां और जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजह से उन्होंने हमारे अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि अगर अब अगर कोई बावला कुत्ता भी हमें काटे तो 14 टीके उसे लगवाने पड़ेंगे हमें नहीं।
फैज़ साहब अनफॉर्चुनेटली मजा तो बड़ा आ रहा है मगर अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से हमें ये प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। जो कॉलर्स मेरे साथ हैं अब वेरी सॉरी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हमारे साथ
मंडे को फिर से होंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। यस यस, अब तो जान नहीं छोड़नी ना हमने इनकी
मंडे को फयाज
अंदर की स्टोरियां इनके पास में है तो वो हमने सुननी है ना।
फौरन आफ्टर आफ्टर द न्यूज ये हमारे साथ होंगे, आपके कॉल्स हम लेंगे। तो सब फिलहाल फयाज बिलान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू जी, थैंक यू फयाज भाई। जो आज आपने वैसे अफगानियों की स्टोरियां सुनाई है ना, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, वो तो कमाल
लेकिन
ही है।
परवेज मुशर्रफ वाली बात आपकी फिर दरमियान में,
हाँ वो दरमियान में रह गई। यस यस यस, चलिए उसके ऊपर बात कर लेंगे फिर हम।
अल्लाह उसे जिंदगी दे।
थैंक यू, हाँ जी बिल्कुल,
उस वक्त तक जब हम बात करें उस वक्त तक अल्लाह उसे जिंदगी दे, ऐसा ना हो कि हम सारे किसी और माहौल में बात कर रहे हैं।
नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू,
आमीन सुम्मा आमीन। सब ये था आज का हमारा प्रोग्राम और अब जान रही है कहीं पर शादी जी, थैंक यू सो मच,
थैंक यू मच, विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह। एंड बकिया का कल इंशाल्लाह ताला 5:30 बजे फिर हम आपके साथ होंगे खबरों के साथ। और अभी जो आपने खबरें 5:30 बजे सुनी थी वो खबरें जो है रिपीट होंगी अभी 8 से लेकर 9 बजे तक। बस चलते चलते गुजारिश के इंतजार जो हमेशा करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा कि अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें। हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खास तौर से हमारे दोस्त हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें, उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफर मुकम्मल करके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हान तआला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह तआला कल फिर आपसे मुलाकात, उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में June 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800 416-526-6800।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोल दिया, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 जा quicktrucklube.com QTL because we care।
की तुसी एनुअल $5,000 दा इंसेंटिव कमाना चाहुंदे हो, कंपनी पेड 92% मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट लेना चाहुंदे हो, तां फिर सोडी फर्नीचर आजो, क्योंकि सोडी फर्नीचर हायर कर रहे ने डिलीवरी ट्रक ड्राइवर्स, जिथे $20 पर आवर प्लस $5,000 ईयरली बोनस दिता जाएगा, ते हर फर्नीचर डिलीवरी ते कमीशन भी कमाओ। हुणी आजो ते कम शुरू कर लो। इस जॉब दी वधेरे जानकारी लई सोडी फर्नीचर नु कॉल करो 416-836-6974 416-836-6974।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
ओ माइया मेहंदी रोका या ब्याह दा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
ਬੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 100 to 700 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਬੋਰਨ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ 416-433-9191 416-433-9191
مسجد ابراہیم ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد کر رہا ہے جو جون 18 شام 6 بجے ٹورنٹو میریٹ مارکم میں ہونے جا رہا ہے۔ اس فنڈ ریزنگ میں دنیا کے مشہور گیس سپیکر شیخ اعلی السید شرکت کریں گے۔ مسجد ابراہیم کی تعمیر کو پورا کرنے کے لیے $600,000 کی ضرورت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس نیک کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ مزید معلومات کے لیے کال کیجیے تنویر سلطان 416-566-3830 416-566-3830